ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाम् जं जस्स जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालम् हि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अवमरणं वा तं तस्तमि देशे तेन विहाणेन तमि कालं हि कोसक्क दिवारेदुं दो वा सह जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौवपश्च सो सद्दिट्ठि सुखो जो संकदि सोहु दिट्ठि।
जिन आगम के आधार से हम कारण और कार्य का जो रहस्य है, जो मर्म है, उसको यहाँ देख रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय प्रत्येक गुण का कार्य अपने अपने से हो रहा है, परंतु अभी तक हमने ऐसा ही माना था कि निमित्त आता है तो कार्य होता है, क्योंकि जो द्रव्य की जो निज शक्ति है, भले वो त्रिकाली उपादान हो या क्षणिक उपादान, वो तो बाहर से दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है। और निमित्त तो बाहर दिखाई देता है, इसलिए जीवों की ऐसी ही भ्रमणा होती है कि निमित्त ही उस कार्य का नियामक कारण है। परंतु वो नियामक कारण कैसे नहीं होता, इसकी तो हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। कर्ता कारक और करण कारक, कर्म कारक, दो हमने देखे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? हाँ बोलो। कर्ता कारक हाँ, जो स्वाधीनपने से अपने परिणमन को करता है उसको कर्ता कारक कहेंगे। और कर्म कारक किसको कहेंगे? कर्ता जिस परिणमन को प्राप्त होता है उसको हम कर्म कारक कहेंगे। ये दोनों ही बातें हमने देखी थी। अब हम करण यानी साधन की बात यहाँ देख रहे हैं। ये जो षटकारक, पहले हमने भिन्न षटकारक देखे अन्य अन्य वस्तुओं में समझाने के लिए जो हम समझाए देते हैं, फिर अभिन्न कारक देखे, वो द्रव्य के भी देखे और पर्याय के भी देखे। द्रव्य और पर्याय को अभेद करके द्रव्य ही स्वयं परिणमित होता है, इस अपेक्षा से द्रव्य ही अपने षटकारक रूप से परिणमित होता हुआ स्वयंभू कहला उसको, वह स्वयं ही अपना परिणमन करता है। और पर्याय को स्वतंत्र बताने के लिए कहते हैं कि पर्याय ही स्वयं का करता है, पर्याय ही स्वयं का कर्म है, पर्याय ही स्वयं का साधन है, पर्याय पर ही षटकारक घटाते हैं, इनको कहेंगे अभिन्न कारक। बात ख्याल में आती है? आप ही को पूछ रही हूँ, ख्याल में आ रही है। अभी हम करण कारक देखेंगे। सुबह कुछ बात निकली थी समुद्घात संबंधी, है ना? चर्चा सुबह निकली थी। कौन सी निकली थी? मारणांतिक के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे, परंतु अपना समय हुआ था इसलिए हमने वहीं पर उसको अधिक चर्चा नहीं की थी। मारणांतिक समुद्घात होता है क्या होता है उसको देखेंगे, क्योंकि बहुतों ने प्रश्न पूछा कि इच्छा के कारण होता है, इच्छा के कारण मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, क्योंकि हम जो मन के द्वारा जो सोचते हैं, हम कहाँ जन्म लेंगे, क्या करेंगे, क्या ऐसी बातें, क्या एकेंद्रिय भी ऐसे सोचते होंगे? एकेंद्रियों में तो अनंत जीवराशि पड़ी है, और ये मारणांतिक समुद्घात मेजॉरिटी करते हैं। सभी जीव करते ऐसी बात नहीं, परंतु बहुभाग, असंख्यात बहुभाग तो मारणांतिक समुद्घात करते हैं, और उसके लिए कोई विचार से करते हैं, इच्छा हुई इसलिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या होता है मारणांतिक समुद्घात में, कि मरने के बाद जैसे हम विग्रह गति में देखते ना, ये पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर या नीचे, कोई एक मोड़ से जाएगा, कोई सीधी गति से जाएगा, कोई दो मोड़ से, तीन मोड़ से। तो जिस रूट से वो विग्रह गति में जाने वाला होता है, मारणांतिक समुदात करने वाला जीव भी उसी रूट से, उसके आत्म प्रदेश वहां तक फैलते हैं जहां वो जन्म लेने वाला है। बात कुछ ख्याल में आई? आत्म प्रदेश यानी ऐसे सिंगल लाइन में फैलते हैं, कहां तक? जहां तक वो जन्म लेने वाला है। मान लेते हैं यहां से ऊपर गया, फिर आड़ा गया, फिर और अंदर गया दक्षिणोत्तर, उसने दो मोड़ लिए। तो मारणांतिक समुदात में भी कैसे, मूल शरीर में तो आत्मा के प्रदेश है ही है, जैसे आपका वो लेसर बीम वगैरह जैसे लाइट रे निकलता है ना, वैसे आत्म प्रदेश उस पूरे लाइन पर फैले रहते कितने काल तक, एक अंतर मुहूर्त तक वैसे ही फैले रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, मरण के समय मूल शरीर से आत्म प्रदेश छूट जाते हैं, पहले मोड़ तक चले जाएंगे एक समय में, फिर दूसरे मोड़ तक चले जाएंगे दूसरे समय में, और फिर तीसरे समय में वहां पहुंच जाएंगे जहां जन्म लेना है। इसमें भी दो कथन आते हैं, एक कथन आता है फिर वापस सब लौटते हैं, फिर जीव जाके जहां जन्म लेना है विग्रह गति से उसी रूट से जाता है, या वो जहां उसका पूर्व शरीर जो है वहां से आत्म प्रदेश उठते हैं और उसी लाइन से चले जाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये तो उसके बारे में बहुत बाद में भी प्रश्नोत्तरी हुई, इसलिए मैंने इसको समझा कि इसको क्लियर कर दो। वो किसी कारण नहीं, उसके पास कर्म बंधा हुआ है और उसका निश्चित जगह पक्की है कहाँ जन्म लेना है, तो सहज ही उसके आत्म प्रदेश फैलते हैं, उसमें अन्य कोई भी कारण नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम करण कारक कह रहे हैं। करण का अर्थ यहां पर क्या लेना है, साधन। तो जो पर्याय रूप से जो द्रव्य परिणमित हुआ है तो उसमें साधन क्या था, तो जब हम द्रव्य पर अभिन्न कारक घटाते हैं तो द्रव्य स्वयं ही उसका कारण है, पर्याय पर घटाते हैं तो क्या कहेंगे, पर्याय स्वयं ही अपने स्वयं का कारण है। तो यहां देखते हम 104 पृष्ठ पर, लोगों में करण कारक अर्थात साधन के बारे में भी कुछ कम घोटाले नहीं है, यानी हमें सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्राप्त करना है तो किस साधन से प्राप्त होगा, सबको तो प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्ति की भी बात करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन से साधन अपनाते हैं लोग, अन्य मति तो कितने ही अन्य अन्य साधन अपनाते हैं, कोई मानता है ये तो ज्ञान मार्ग है, कोई योग मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग मानता है, उसमें अलग अलग कुछ पद्धति है, हम तो उसको नहीं मानते, हम तो जैनी है ना, तो हम तो कहेंगे सम्यक दर्शन पूर्वक फिर मुनि अवस्था धारण करेगा जीव, अंतरंग में लीन रहेगा, ध्यान अवस्था प्राप्त करेगा, फिर अरिहंत अवस्था प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। परंतु इसके लिए साधन क्या है, तो साधन के बारे में भूल चलती है। मोक्ष का साधन हमने देखा है कि मुनि हुए बिना अरिहंत और सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होगी, तो साधन क्या माना, बाह्य में जो मुनि दीक्षा अंगीकार की जाती है और वो होती भी है, उसी को साधन माना। जिसको निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुआ है उसकी अवस्था में बाह्य में व्यवहार रत्नत्रय भी होता है, जो अंतरंग में भावलिंग जिनके प्रकट हुआ है उनके बाह्य में 28 मूल गुण आदि पालन करने के परिणाम भी होते हैं और व्रतादि के वैसे शरीर आदि की उसके अवस्थाएं भी पाई जाती है। परंतु यदि हम बाह्य व्रतादि को ही अगर साधन मानते हैं तो ये हमारी साधन के बाबत भूल है, हमने करण कारक को नहीं पहचाना, क्योंकि आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है वो स्वभाव में से ही प्रकट होगी, बाह्य व्रतों से या शरीर की अवस्था से आत्मा की अवस्था प्रकट नहीं होगी। सहचर कहेंगे जिस समय आत्मा की इतनी वितरागता की अवस्था होती है उस समय वहां जो शरीर की अवस्था है वो तदनुरूप होगी, वहां के जो शुभ भाव हो वो भी वैसे ही होगी 28 मूल गुण पालन करने के। परंतु शरीर की अवस्था को यदि हम साधन मानेंगे तो ये हमारी भूल है। जो जीव चरम शरीरी होता है उसी भव में मोक्ष जाने वाला होता है, उसके तो नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होता है। तो क्या वज्र वृषभ नाराज सहनन ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है? वो साधन नहीं हो सकता। उस जीव को क्या क्या बातें होती है इसका ज्ञान कराया जाता है, परंतु अगर वज्र वृषभ नाराज सहनन को हम साधन मानेंगे तो सातवें नरक में जाने वाले को भी वो पाया जाता है, तो उसको तो हम साधन कह नहीं सकते। तो कोई भी स्वभाव रूप पर्याय प्रकट होती है उसका साधन क्या है? तो स्वभाव स्वयं ही उसका साधन है, या पर्याय की तरफ से कहेंगे तो पर्याय स्वयं अपना साधन है। तो उसके बारे में तो हमने पहले बात की थी ना, वो कोई बुजुर्ग आए थे हमारे पास और उन्होंने बताया, किसी ने हमको सम्यक दर्शन दिलाने की बहुत बता दिया गारंटी के साथ, मैं आपको दिला दूंगा। और वो सुबह उठकर रोज ओम नमः सिद्धेभ्यः कहकर जाप देते थे पौने पौने घंटे, और फिर कहते थे अरे हमें हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब पता चला कि हमें सिद्धों का स्वरूप भी नहीं जान रहे और हम ओम नमः सिद्धेभ्यः कह रहे, तो उन्होंने साधन किसको माना? सम्यक दर्शन का साधन क्या माना? कि हम बिल्कुल स्थिर आसन से बैठ जाएंगे, नासाग्र दृष्टि रखेंगे और फिर ओम नमः सिद्धेभ्यः कहेंगे या ओम कुछ कहेंगे, और बस हम जाप नाम स्मरण करते बैठेंगे तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। ये उनकी साधन के संबंध में भूल चल रही है। अन्य भी क्या करते हैं, हमें तो इतने कुछ फोन भी आते रहते हैं, क्या करना, हम त्राटक करते हैं। आपने सुना है दीपक भाई त्राटक क्या होती है? हाँ सुना है। अच्छा, क्या करते हैं हम दर्पण के सामने बैठते हैं और उसको एक टक देखते रहते हैं। ये नया तरीका है, अच्छा है आत्मानुभव करने के। ऐसे बहुत से तरीके हमें फोन पर पता चलते हैं। क्या चलते हैं? कोई कहते हैं कि हम जो संगीत के आलाप गाते हैं तो इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम मोक्ष मानो मिल गया हमको, तो संगीत की वो आराधना करते करते संगीत गाते गाते हमको सम्यक दर्शन हो गए। अच्छी बात है, राग में तल्लीन होते। कोई कहते कि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत हल्के हल्के हो गए और इस शरीर से भिन्न आकाश में तैर रहे हैं, तो फिर पूछते हमको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, आप ही बताओ। जिसको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं ये शंका चल रही है उसको निशंक अंग कहाँ है। ये साधन के बारे में और स्वरूप के बारे में सारी विपरीतता, भूल भरी मान्यता है। कोई कहते हमको दिव्य प्रकाश दिख देगा, ये प्रकाश कौन से द्रव्य की अवस्था होगी? हाँ उद्गल द्रव्य की। और क्या माना? हमें दिव्य प्रकाश दिखा, हमको सम्यक दर्शन हुआ। कोई कहते हमें कुछ तो हो गया, कुछ तो हो गया, हमको सम्यक दर्शन हुआ। कोई कहते मुझे ऐसा लगता है कल रात में सोते सोते मेरे को सम्यक दर्शन हो गया, आप बताओ हुआ कि नहीं बताओ। और वो हमको पूछ रहे हुआ कि नहीं आप बताओ यानी ये सारे क्या है, हमने किसी विशिष्ट बात को आत्मानुभूति मान ली। हल्का हल्का होना, बहुत शांति शांति लगना, यही आत्मानुभूति है ऐसा लगता है। देखो यहाँ 105 पृष्ठ पर आते हम, नीचे से दूसरी लाइन, दूसरा पैराग्राफ। अब तो प्रेक्षा ध्यान विपश्यना नाम सुने हैं कहीं? हाँ अच्छा अच्छा हाँ। आदि विविध ध्यानों की फैशन चल रही है, क्लासेस चल रहे हैं। कोई स्वयं को आसमान में उड़ान लगाते हुए अनुभव करता है, तो किसी को शुभ्र सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कोई संगीत के आलाप द्वारा आत्मा की अनुभूति होने का दावा करते हैं, इसी को वे आत्मानुभूति एवं सम्यक दर्शन मान भी लेते हैं। ध्यान के ध्येय संबंधी तो अज्ञान है ही। क्या कहा? ध्यान की तो प्रैक्टिस है, परंतु किसका ध्यान करना है इसी बात में कोई पता ही नहीं ना। केवल हमको ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है क्या पता? पहले ध्यान की प्रैक्टिस तो कर ले, फिर ध्येय निश्चित कर लेंगे। तो ध्यान के ध्येय संबंधी तो अज्ञान है ही, उसके साधन संबंधी यानी करण कारक संबंधी भी अज्ञान है। तो जो आत्मानुभूति है किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। उसका साधन क्या होगा? हमने क्या देखा है, पर्याय के षटकारक पर्याय में लगते हैं। आत्मानुभूति ज्ञान की पर्याय है तो उसके षटकारक कहाँ हो गए, बाहर कहीं होगी ना, ना शरीर में हो गए, ना व्रतादि में हो गए, ना ही कोई परवस्तु, कोई भगवान, कोई गुरु हमको वो करा देगा। तो ज्ञान की पर्याय में ही उसके षटकारक हो गए, तो उसका साधन अर्थात कर्ण भी ज्ञान की पर्याय ही है। शास्त्र में बताया है कि प्रज्ञा क्षयिनी द्वारा भेद विज्ञान करके, अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर, ये प्रज्ञा क्षयिनी सुना है ना, क्या होती है प्रज्ञा, भेद ज्ञान की जो है, ज्ञान की पर्याय कोई प्रज्ञा कहा, तो उसके द्वारा क्या क्या हो जाता है, क्या किया जाता है, भेद विज्ञान किया जाता है, किसमें और किसमें, स्व और पर में, यानी उसमें एक पार्टी अहम स्वयं, और पर में किसको जान डालना है, बोलो पर में किस किस को डालना, हाँ बोलो, अन्य जीवों को लिया, बाकी सबको पर में स्व में रखना, आत्मा में से क्या पर में डालना, हाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म, तो भाव कर्म जो है ना राग, जिसको हमने अपना माना है, उससे भी भेद ज्ञान करना है, राग मैं नहीं हूं, ये बात चल रही है ना समय सार में बारंबार, राग में जो एकत्व बुद्धि है उससे भी भेद ज्ञान करना है, मैं तो ज्ञान मैं हूं, और ये सारे रागादि विभाव भाव उसको प्रभाव में डाला है, कहीं कहीं उसको परद्रव्य भी कह दिया है। तो ये जो भेद विज्ञान करके, अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर भेद का ज्ञान किया जाता है, किसी को बाहर नहीं निकालना है, ना शरीर को जुदा करना है, ना ही राग को निकाल बाहर करना है। हम तो पहले राग को क्या करना चाहते हैं, कम, रास्ता सही है ना, साधन क्या है, राग को कम करने से आत्मानुभूति होगी कि नहीं होगी, यदि राग को कम करना आपके हाथ में है तो कम क्यों करते, पूरा नाश कर दो ना, करो ही मत। हमने क्या माना है, राग करना या राग छोड़ना हमारे हाथ की बात है, हमें तो राग से भिन्नता पहले पहचाननी है, पहले उस भिन्नता का ज्ञान करना है और अनुभव अपना आप करना है। अब तक क्या कर रहे थे, राग को अपने खाते में मिलाकर, ज्ञान और राग को एक में कर वे हम है ऐसा जानते थे, अभी क्या करना है, अपने में ही उठने वाले राग से हम भिन्न है ऐसा अनुभव करना है। तो वो कैसे करेंगे, ज्ञान द्वारा, ज्ञान द्वारा हमें राग भी जानने में आता है और ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वयं को भी, ज्ञान को भी जान रहा है, तो हमें तो इतना पहचान तो है ना, अभी अपने में कोई क्रोध मान माया लोभ के परिणाम उठे उसको किसने जाना, हमने जाना, ज्ञान के द्वारा जाना। तो जो जानने वाला ज्ञान वह मैं हूं, और अपने में उठने वाले ये जो राग आदि वो मैं नहीं हूं, ऊपर है, इसको कहेंगे भेद विज्ञान। तो ये प्रज्ञा रूपी जो छैनी है उसको पटक कर हम क्या कहेंगे, ये भिन्न भिन्न कर देंगे, भिन्न भिन्न जानेंगे। अभी राग है वर्तमान में विद्यमान, होते हुए को हम भिन्न जान रहे हैं। देखो लोग तो ऐसा एक दूसरे को उपदेश भी देते, वो अच्छा भी लगता है, पहले राग कम करो, पहले कर्म को हटाओ, तब तो आत्मानुभूति होगी कि नहीं होगी, तो ये साधन के मानने में भूल है। यहां क्या कहते हैं, प्रज्ञा क्षयिनी द्वारा भेद विज्ञान करके, अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर, जानकर कहा, पहले स्व भी है और पर भी है, मैं ही मैं हूं और जगत मिथ्या ही है ऐसे नहीं है, ये तो भ्रमणा है। तो स्व भी है पर भी है, ज्ञान सबको जानता है, फिर भी स्व को स्वरूप से जानना है और पर को पर रूप से जानना है, जानने का निषेध नहीं है, हम उसका अपना मानते हैं, स्व मानते हैं, अहम बुद्धि करते हैं, उसका निषेध है। हाँ, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है आपका कहना है, और आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, और ये दोनों ही एक समय में होता है, जो सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है उसी समय आत्मा की अनुभूति होती है। ज्ञान ने तो स्व और पर दोनों दिखा दिया, परंतु ये श्रद्धा मान ही नहीं रही थी ना। ज्ञान तो स्व और पर को जानता है, परंतु यही स्व है ऐसी जब तक प्रतीति नहीं हो रही है तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होता। तो उसका समय एक है, जिस समय आत्मानुभूति अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हुई वही समय है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। बाद में तो वो प्रतीति बनी रहेगी, शुद्धोपयोग में नहीं भी हो तो भी वो सम्यक दर्शन तो चालू रहेगा। तो उसका मेथड, उसकी मेथड क्या है, ये सारा कार्य ज्ञान के द्वारा होता है। आत्मानुभूति में अनंत गुणों का जो रस है वो अतीन्द्रिय वेदन है, वो तो अनुभव में आया है, परंतु ये सारा कार्य किया किसने?
ज्ञान ने प्रकाश किया है,
ज्ञान ने ही सारा जाना है। भेद ज्ञान का कार्य, भेद विज्ञान जो है वो ज्ञान के द्वारा ही होता है, और ये ज्ञान जीव के पास अनादि का है। ज्ञान के द्वारा हम जो निर्णय करते हैं, आगम को जाना हमने ज्ञान के द्वारा, आगम के द्वारा जो जाना उसका तत्व निर्णय किया हमने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही बारंबार ये स्व कौन है पर कौन है इसका निर्णय करते करते स्व को भी जानने वाला ज्ञान ही है। फिर श्रद्धा ने क्या, श्रद्धा तो बस यह मैं हूं ऐसी वो वहां श्रद्धा हो जाती है उसकी, मैंपना स्थापित करना। वो अभी तक क्या कहते, शरीर मैं हूं ऐसे उसकी चल रही थी मान्यता, राग मैं हूं ऐसी मान्यता चल रही। ज्ञान ने तो उसको दिखा दिया, वो मान नहीं रही थी। जब जिस समय उसकी मान्यता हो जाए, ज्ञान ने तो स्व पर का देखो, आत्मा तो अभेद एक अखंड है, फिर भी हम उसको समझाने के लिए ये ज्ञान है ये दर्शन है ऐसी बातें करेंगे, होता तो एक समय में है, अनंत गुणांश सम्यक्त्व कहा है। हाँ, तो प्रज्ञा द्वारा ही स्व का ग्रहण करना है। ग्रहण करना है नहीं क्या, देखो शास्त्र में आता है आत्मा को ग्रहण करो और राग को छोड़ो। कौन से हाथ से ग्रहण करना, लेफ्ट के राइट? हाँ, दाबे हाथ से ग्रहण करना कि दाहिने हाथ से? क्या ग्रहण करना है नहीं जानना, वहां आता है राग को छोड़ो और आत्मा को ग्रहण करो। इसका अर्थ क्या है, राग को जानना छोड़ो और आत्मा को जानना चालू करो। ग्रहण किसके द्वारा होता है, ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण करना है, और उसी को जानते रहते उसको जानना छोड़ना है। क्योंकि अभी तक हमारी राग में एकत्व बुद्धि थी ना, अभी हमने पहले में पहले भेद विज्ञान किया, दोनों को जाना, पर को भी जाना स्व को भी जाना, अब क्या करना है, स्व को जानते रहना है। पहले में पहले भेद किया, फिर अभेद ज्ञान अपने में लीन हो जाएगा, तब उसकी आत्मानुभूति हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं संप्रदान कारक, यानी ये जो साधन के बारे में जो भूल चल रही है। साधन क्या है, पहले में पहले आगम के द्वारा ये जो छह द्रव्य है, सात तत्व है, देवगुरु शास्त्र का स्वरूप है, स्वपर संबंधी मोह, वेद विज्ञान के, ये सारी बातें आगम के द्वारा हम जानेंगे, उसको भी ज्ञान कहेंगे। मोक्ष मार्ग संबंधी जानकारी लेंगे, सही जानकारी। मार्ग क्या है, पहले में पहले हम सही जानकारी लेंगे, फिर तत्व ऐसे ही है ऐसे दृढ़ता पूर्वक जब निर्णय होता है और आत्मा की अचिंत्य ऐसी महिमा जागृत होती है अपनी आप, तो उपयोग सहज ही अपने में स्थिर हो जाता है, अपने को ज्ञानमय अनुभव करने लगता है, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है और उसको सम्यक दर्शन होता है। तो इस जीव का पुरुषार्थ क्या है, इसके क्या करना है, तत्व विचार और तत्व निर्णय। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि तत्व विचार में तद्रूप होकर यह जीव परिणमता है, तो स्वयमेव कर्मों में उपशमादि परिणमन होता है और जीव को यहां सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो ये साधन है, और हमने अन्य अन्य साधन मान लिए। कोई माला जपता है उसको साधन मानता है, कोई केवल ऐसे शरीर की क्रिया करके मुझे आत्मज्ञान होगा इसे साधन मानता है। ये साधन के बारे में अपनी भूल है। अब आगे बढ़ेंगे, 106 पृष्ठ पर आते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान का अर्थ क्या देखा था, संप्रदान किसको कहना, हाँ बोलो। हाँ जिसके लिए ये कार्य जिसके लिए किया जाता है, तो देखो संप्रदान, सेकंड लाइन, संप्रदान अर्थात ज्ञान का जो कार्य हुआ, जो ज्ञान हुआ, किसको दिया वो ज्ञान? स्वयं को दिया। दूसरे को कोई दे सकता है क्या? गुरु गुरु तो देता होगा कि नहीं? गुरु अपना ज्ञान सबको थोड़ा 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 बांटता होगा, या कितने 100 स्टूडेंट्स है तो 100 को सब थोड़ा 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 देते होंगे ना, आपके गुरु जी देते कि नहीं आपको? तो कहते हैं ज्ञान जो होता है वह स्वयं को ही दिया उसने। निमित्त का कथन क्या करते हैं? गुरु ने शिष्य को दान दिया, ज्ञान का दान दिया। ज्ञान दान भी कहते कि नहीं कहते? ज्ञान दान नाम तो सुना है। तो देखो दान देते हैं कि नहीं? ज्ञान का दूसरे को देते हैं ना ज्ञान, क्या करते हैं? एक कहने की पद्धति है, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ऐसा बताते हैं कि गुरुजी के पास हमें ये सारा ज्ञान मिल गया, उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया। वहां निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक्त्व प्रदान नहीं कर सकता, उसकी पर्याय ला नहीं सकता। क्या कहा? कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। उसकी थोड़ी ज्ञान की पर्याय में बढ़ोतरी हो जाए, गुरु उसको थोड़ा ज्ञान को हैंडल मार के थोड़ा बढ़ोतरी कर दे उसी, ऐसी बात नहीं है। शिष्य उसे अपनी योग्यता एवं पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। हाँ, उस वक्त गुरु की उपस्थिति होती है, इसलिए निमित्त का ज्ञान कराने के लिए और गुरु के प्रति अपना विनय बताने के लिए, कृतज्ञता जो हमारी है वो कहने के लिए हम कहेंगे आप यदि नहीं होते तो ये बात हमें कौन सिखाता, कहते हैं ना। परंतु जिसकी उसकी पर्याय अपने अपने से होती है, ये मूल, ये तो सिद्धांत है। सिद्धांत को हमें प्रतीति में लेना है, प्रतीति में लेने से कुछ बोली भाषा बदल नहीं जाएगी। यदि गुरु के सामने जाके कहेगा तुमने क्या किया, मैंने अपने ज्ञान पर्याय से जाना, तो वो शिष्य भी नहीं कहलाने के लिए लायक। ऐसी विनयपूर्वक ही भाषा होती है। अनेक लोग कहते हैं हमने तो गुरु कर लिया, ये अपने में तो इतनी मान्यता नहीं, परंतु अन्य मति बहुत ऐसे हमें मिलते हैं। क्या कहते हैं? हमने गुरु बना लिया किसी को, किसी भी व्यक्ति एक्स वाई जेड, वे हमारे गुरु हैं। अभी हमारा आज से सारा भार उनके ऊपर सौंप दिया। जैसे बम्बई से हम आए थे तो हमने एक कुली कर लिया, क्या किया, हमारा सारा बोझ है उसके माथे पर लाद दिया। ऐसे अन्य मति क्या मानते हैं, और सचमुच ऐसा मानते हैं कि आज से हमने गुरु बनाया है, अभी वो वही हमारे, और कुछ करना है तो क्या करना है, गुरु की आज्ञा लेना। सुना कि नहीं सुना? यहाँ फैर नहीं चलता गुरु आज्ञा का, हाँ अपने में नहीं परंतु अन्य में चलती है ना बात। क्या करना? गुरु आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना। बम्बई में ऐसे बहुत से ग्रुप्स है जैनी नाम धराने वाले, क्या करते हैं, हम गुरु की आज्ञा लेते हैं। मुझे गांव जाना है, जाऊँ क्या ना, ये पुस्तक मुझे पढ़ना है, पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। उनकी कैसेर भी उनके आज्ञा के बिना कोई नहीं सुन सकता। सुना है आपने? सुना होगा। हाँ, हमको शादी करनी है, उसने बता दिया ही आऊँ, ये इस लड़की को शादी करो, हाँ आज्ञा, ये गुरु की आज्ञा होती है क्या? मोक्ष मार्ग का उपदेश जो गुरु देते हैं उसको सुनना ही वो आज्ञा है। ये क्या मानते हैं? जो हमें कोई भी सांसारिक कार्य करना है तो जाके गुरु की आज्ञा मानो, परमिशन, परमिशन को आज्ञा कहते हैं, वो बात नहीं है। देखो अनेक लोग कहते हैं हमने तो गुरु कर लिया, अब हमारा सारा भार गुरु पर है, वही हमारा भला करेगा, अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब ये नीचे का एक पैराग्राफ, मोक्ष मार्ग का उपदेश यानी देशना लब्धि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु से तथा आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होती है, अन्य किसी से भी नहीं, यह बात सत्य है। यह तो निमित्त का कथन बताया, परंतु यह तो निमित्त है। हम स्वयं जीव द्रव्य मोक्ष मार्ग का त्रिकाली उपादान कारण है, क्योंकि मोक्ष मार्ग हमारी पर्याय है, मोक्ष भी हमारी पर्याय है, वो हमारे द्रव्य में से, हमारा द्रव्य स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमित होता है, और मोक्ष पर्याय रूप से भी परिणमित होगा, तो उसका उपादान कारण हम स्वयं हैं। और गुरु को क्या कहा? निमित्त कारण। गुरु होते हैं क्योंकि ज्ञानी के देशना के बिना तो मोक्ष मार्ग आरंभ ही नहीं होता है। तो हम स्वयं त्रिकाली उपादान कारण है तथा पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति प्रकट होती है, यानी ये कोई अन्य किसी अन्य को ये मार्ग दे ही नहीं सकता, कोई किसी को सम्यक तो प्रदान नहीं कर सकता। कोई ऐसे हमने कहने वाले भी मिलते, हमने इतने इतने मुनियों को सम्यक दर्शन दे दिया, कोई कहता है मैं तुमको इतना बारवा गुणस्थान दे दूंगा, है तैयारी लेने की? कहने वाले बहुत सारे हैं, आपने सुने नहीं है? अच्छा है आप यहाँ जयपुर में बसते, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। लोग तो इतने भले हैं कि कहाँ क्या क्या बातें चलती है वो सारी भ्रमणाएं हमारे कानों में आकर बताते रहते हैं। अभी हम अपादान कारक कहेंगे। अपादान किसको कहना है? हाँ, जो ध्रुव वस्तु है जिसमें से कार्य हुआ है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान में से ही उत्पन्न होती है। अभी तक हमने क्या माना? दिव्य ध्वनि में से हमें ज्ञान हुआ हो, ये शास्त्र पढ़कर शास्त्र में से ज्ञान आया, तो क्या कहते हैं? ज्ञान की पर्याय ज्ञान में से ही उत्पन्न होती है। ऐसा न मानकर शास्त्र में से ज्ञान होता है, दिव्य ध्वनि से ज्ञान होता है, ज्ञेय में से ज्ञान आता है, मानने वाला जीव अज्ञानी है। उसने अपनी चेतन की पर्याय ज्ञान की पर्याय जड़ में से आती है जाना, ये उसका ज्ञान है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। तीनों ही प्रकार के उपादान कारण यानी त्रिकाली तथा क्षणिक अपादान कारक है, परंतु परद्रव्य या निमित्त अपादान कारक नहीं है, क्योंकि जो पर्याय है वो उसी द्रव्य में से आती है। इसलिए जो उपादान कारक है उसको यहाँ अपादान कारक कहा। कुछ समझ में आता है? जो उपादान कारण है कौन सा? त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान के दो भेद, उसको यहाँ अपादान कारक कहा है। कर्ता कारक में किस किस को लिया था? वहां चारों लिए थे, क्योंकि वहां तो हम भिन्न कारक और अभिन्न कारक दोनों की चर्चा की थी हमने, इसलिए वहां तो चारों को लिया था। अब यहां पर किसमें से होता है? तो त्रिकाली ध्रुव वस्तु में से होता है या पर्याय में से पर्याय होती है। उस अपेक्षा त्रिकाली को भी लिया और क्षणिक को भी लिया, परंतु परद्रव्य निमित्त अपादान कारक नहीं है। 18-20 सालों पहले की बात है, अभी पुस्तक लिखी उसके पहले 18-20 साल हो गए, 2001 में लिखी थी। मेरी माँ के आग्रह के कारण उसके साथ मैं गई थी धर्म की धुरा संभालने वाले किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास। अब नहीं पूछना कौन थे वे, उन्हें प्रश्न पूछने का माँ का ही आग्रह था, योग्य उत्तर की आशा नहीं थी, क्योंकि उसका स्वरूप देखते ही जान गए थे हम क्या स्वरूप है उनका। फिर भी पूछा था कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, कैसे होगा बताइए। बहुत बड़ी समाज बैठी थी उनके सामने हाथ जोड़कर, तो मेरी माँ पीछे पड़ी, चलो इनको पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना, तुमको इसका इतना अभ्यास है, आप चर्चा करो। तो मैंने पूछा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसी होगी बताइए, तो कहा उन्होंने बाली के वह बहुत कठिन है, मेडिकल पास करके डॉक्टर होना 10,000 में से किसी को ही संभव है। फिर मैंने कहा डॉक्टर की पदवी तो मैं बहुत पहले प्राप्त कर चुकी हूँ, मुझे सम्यक दर्शन के बारे में बताइए। उस पर उन्होंने कहा था उसका कुछ नियम नहीं है, किसी को झोपड़ी में होता है तो किसी को महल में होता है। फिर और आगे क्या कहा? फिर किसी को बुला लिया, अरे कौन है वहां, अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के इश्तिहार का क्या हुआ, यानी उन्होंने उत्तर देने से टाल दिया। यानी किसमें से हुआ? झोपड़ी में से हुआ कि महल में से हुआ? सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त करना है तो उत्तर क्या मिला? किसी को झोपड़ी में होता है, किसी को महल में होता है। मैंने जो समझना था वह समझ लिया था, तुम भी समझ गई होगी कि सम्यक दर्शन आत्मा में से होता है और आत्मा का लक्ष्य करने से होता है। यह प्रसंग परनिंदा या आत्म प्रशंसा करने के लिए नहीं बता रही हूँ। तुम्हें भी परीक्षा प्रधानी होकर किसी के कथन द्वारा उसके उपदेश की सत्यासत्यता की परीक्षा करनी चाहिए। कहते हम कैसे पहचाने, तो किसी के उपदेश द्वारा ही उसकी पहचान हो सकती है कि उसका असली स्वरूप क्या है, और हमें तो उसके बारे में बिल्कुल परीक्षा प्रधानी होना ही चाहिए। अब बात आती है अधिकरण कारक की। किसको कहना अधिकरण कारक? अधिकरण किसको कहना? जिसके आधार से होता है। प्रत्येक द्रव्य और पर्याय स्वयं के ही आधार से रहते हैं, वे स्वयं का ही अधिकरण है। क्या कहा? हमने किसी पर वस्तु के आधार से अन्य वस्तु रहती है ऐसा मान लिया है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही आधार से अपने में ही रहता है, परंतु इसे न मानकर अज्ञानी जीव ने आज तक शरीर के आधार से ही अपना अस्तित्व माना है। क्या हमने अभी तक नहीं माना था? शरीर के आधार से जीव रहता है कि नहीं रहता? लोग पूछते हैं, अरे जीव को रहने के लिए शरीर की जरूरत है कि नहीं है? आप आत्मा 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 करते हो, शरीर के बिना आत्मा कैसे रह सकता है? तो उनको हम पूछते हैं, सिद्ध भगवान रह रहे कि नहीं? अनंत सिद्ध विराजमान है, उनके शरीर की जरूरत नहीं है? अरे उनको नहीं रहती होगी, हम आपको रहती है कि नहीं? शरीर न होगा तो कहाँ रहोगे, लटोगे के बीच में, ऐसा पूछते हैं। तो शरीर नहीं होगा तो जीव कहाँ रहेगा, ये मान्यता है। दूसरी बात क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग के लिए शरीर की आवश्यकता है ना? साधन में भी भूल और अधिकरण में भी भूल। क्या माना है? मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, कुछ दयादान करने हैं, कुछ मुनिव्रत धारण करना है, कुछ यात्रा आदि करने, शरीर की जरूरत है कि नहीं है? तो हमने अपना अस्तित्व किसके आधार से मान लिया है? शरीर के आधार से। शरीर को ठीक रखो तो तुम्हारी धर्म साधना ठीक चलेगी आदि सलाह लोग देते हैं। आपको मिले कोई ऐसे सलाह देने वाले? मिले ना, अच्छा है क्या? तो कहते शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, तो शरीर की थोड़ी सेवा चाकरी करो, उसको ठीक ठाक रखो तो तुम्हें धर्म साधना हो जाएगी, ऐसा भी कहते। जब कोई नमोकार मंत्र भक्तामर आदि की बात आती है तो उसके फायदे बताते हैं। आपने कोई सुने कि नहीं फायदे? ओ तो नमोकार मंत्र में ये न आता है तो उसके कारण वो फेफड़े अच्छे रहते हैं, वो उसके कारण ये ऐसा अच्छा होता है, वे किडनी अच्छी होती है, वो ब्रेन में ये इफेक्ट होते हैं, ये सारे फायदे बताते। किसमें फायदे होते? शरीर में क्या? अपने में? शरीर में। अच्छा, भक्तामर स्तोत्र कहने से क्या क्या होता है, फिर वो किस दिशा में मुंह करके बैठना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, लाल रंग के कपड़े या कोई कहते ग्रीन कलर के सारे वस्त्र, वो चूड़ी भी ग्रीन कलर की, फिर वो किया ऐसा करो, इधर मुख करो, फिर ये भक्तामर गाओ, ये सारी क्या भ्रमणा ही भ्रमणा चलती है। हाँ तो क्या होगा? ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा होगा, क्या फायदा होगा हमको बताओ? जल्दी मोक्ष मिलेगा? ये सारे संयोगों की लालच दिखाते हैं। देखो ये मिथ्या तो भी ना, नए नए फैशन लेके आते हैं। आपके यहाँ कुछ फैशन चलते होंगे, जैसे वस्त्रों के और बालों के फैशन चलते हैं ना? हमारे यहाँ वो वास्तुशास्त्र चलता है, आपके यहाँ चलता है कि नहीं चलता? चलता है। हाँ हाँ, ये घर है ना, ये ऐसा तिरछा नहीं चाहिए, ये तुड़वा दो, इधर ये ऐसा कर दो। हाँ, और ये क्या करना है, ये खिड़की है ना, इधर नहीं चाहिए, वो तुड़वा दो। वो ये पानी की टांकी इधर अच्छी नहीं है, वो उधर करो। देखो घर बांधने का जो कोई इंजीनियरिंग का साइंस होगा वो होगा, जो कोई हवा प्रकाश की दृष्टि से होगा, परंतु ये क्यों कराना चाहते हैं? ये तुड़वा दो तो आपकी तरक्की हो जाए। ये दुकान में ये आपका गल्ला इधर है ना, पैसे का वो बॉक्स, वो ऐसा इधर करो, दक्षिण का वो उत्तर की ओर करो, आपकी अच्छी तरक्की हो जाएगी। ऐसे आपको कोई मिले कि नहीं मिले? सब जगह मिल रहे हाँ। और वो सलाह देने वालों की आमदनी भी बहुत है। वो जिसको सलाह देते उसका कुछ भी हो, परंतु सलाह देने वालों की तो आमदनी अच्छी चलती है। तो मान लेते हैं संयोग सुधरे तो अपना क्या भी, अपना क्या होगा? हमें तो संयोगों से अपना भेद ज्ञान करना है। संयोगों से मैं भिन्न हूँ, संयोग ना अपने दुख के कारण है ना सुख के कारण है, तो ये संयोगों को क्यों पलटा रहे? ये घर तुड़वा तुड़वा कर हमारे संयोग इकट्ठे करने हैं, भले अच्छे हो या बुरे हो, तो उससे हमारे में क्या बना बिगड़ा? क्यों? आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। ये अधिक आमदनी वाले कितने सुखी हमको पता है, कितने सुखी है हमको पता है, जिसकी आमदनी बढ़ती। हम अपनी अपनी बात करो, बचपन में तो हम कम पैसे वाले थे, अभी तो अच्छे हुए, तो वो बचपन के दिन याद करके अरे हम तभी सुखी थे ऐसे क्यों मान रहे है ना? पैसा आने से कोई सुखी नहीं होता है, फिर भी सारे हम एक दूसरे कंपेयर करते थे, उसके पास कितना धन है, कितने लाख कमाता है, इसकी चर्चा। ये हम किसी से मिलते हैं तो करोड़ों की और लाखों की चर्चा करते हैं। हम बोले हमें तो ये करोड़ बिरोड़ कुछ समझता नहीं, हम तो असंख्यात और अनंत को ही जानते हैं। आपको फिगर्स यानी अंकों की इतनी चाह है, तो हम भी आप भी आ जाओ, हम आपको करना नियोग सिखाएंगे, फिर हम अनंतों की और असंख्यातों की बात करेंगे। क्यों? अभी तो करोड़ों में मजा आ रहा है, हम कोड़ा कोड़ी बता देंगे, हम असंख्यात बता देंगे। ये बहुत भ्रमणा चलती है। औरंगाबाद में एक फैमिली थी, तो वहां किसी ने बताया चलो हम मूल से ही वो वास्तुशास्त्रज्ञ के अनुसार हम घर बांधेंगे। पूरा बंगला डाउन कर दिया उसने, पूरी एक एक ईंट वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बांधी, घर बांध कर अच्छा बंगला तैयार हुआ। सोचा चलो अभी कुछ यात्रा करके आएंगे, तो पूरी फैमिली गई यात्रा करने को, तो लौट रहे थे तो ये फैमिली के नौ मेंबर उसमें खिला, अकेला रह गया रह गया ना वो। ये हम तो किसी के सलाह के पीछे बिना सोचे पागल की भांति दौड़ते हैं। यह है नए फैशन मिथ्यात्व के, और भी बहुत है हमारे पास नुस्खे। ये फेंग शुई क्या होती है, और भी कुछ कुछ होता है। हाँ क्या कहते हैं, अपने शास्त्रों में लिखी है बताते हैं, क्योंकि भगवान की वाणी में क्या नहीं बताया? दसवें पूर्व में सभी विद्याएं बताई है मैली, तो मैली विद्या करो ऐसी बताया है? ये जो बताते हैं अपने शास्त्र बता के, ये जैनियों के शास्त्र में है वास्तुशास्त्र, परंतु उससे मेरा कल्याण होता है, ये मिथ्या मान्यता है कि नहीं मान्यता? क्यों भाई? देखो देखो, अपने में तो संगीत शास्त्र भी बताया है, वैद्यक शास्त्र भी बताया, शास्त्र की बात क्यों नहीं? परंतु उससे मेरा कल्याण होगा, उससे मेरे संयोग सुधरेंगे और फिर मैं सुखी होगा होऊंगा, ये मान्यता मिथ्या है कि नहीं है? क्या सही है? घर कैसा बांधना चाहिए उसका इंजीनियरिंग का स्थापत्य शास्त्र होगा, हम उसको मानते हैं। परंतु ये जो आजकल जो भ्रमणा चल रही है, ऐसा करो तो तुम सुखी हो जाएगे, ऐसा करो तो पैसा आएगा, ये बात तो मिथ्यात्व है, क्योंकि वो इसी के द्वारा भूल भरी बात चलती है ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में मिथ्यात्व का इतना वर्णन है, तो मिथ्यात्व करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिथ्यात्व का वर्णन है कि नहीं अपने शास्त्र में, तो मिथ्यात्वी रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे इतना वर्णन है ना उसका, हाँ उसके त्यागने की बात है। हाँ जो शास्त्र है उसमें तो सब आएगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, देखो वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ये सहनन किसको कहते हैं? ये जो हड्डी की जो मजबूती होती है, उसके जो वेस्टर्न होता है कवरिंग, उसकी जो कोई मजबूती होती है उसको कहेंगे सहनन। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, उसके बिना कोई क्षपक श्रेणी मानकर निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा शास्त्र का वचन पढ़कर इस श्रेष्ठ सहनन वाले शरीर के आधार से ही मोक्ष प्राप्त होता है मानते हैं, वहां हमने शरीर को आधार मान लिया। ये तो हमने सातवें नरक की बात देखी थी। आगे शास्त्र के ये सारे वचन निमित्तों का ज्ञान कराते हैं, अनुकूल परिस्थिति बताते हैं। निमित्त देखो, निमित्त शास्त्र भी होता है, निमित्तों का ज्ञान भी कराया जाता है, परंतु निमित्त से कार्य होता है ये मान्यता भूल भरी है, और निमित्त लाए नहीं जाते, वो सहज होते हैं, वे कहीं सच्चे कारक या क्रिया के जनक नहीं है। अभी यहां तक तो हमने कारकों की चर्चा जो समाप्त होती है, हमने छह कारक देखे, भिन्न भिन्न वस्तुओं में उसको घटित करेंगे, जैसे निमित्त आदि की अपेक्षा तो हम उसको भिन्न कारक कहेंगे, एक ही द्रव्य में घटित करेंगे तो उसको अभिन्न कारक कहेंगे। अभिन्न कारक में भी द्रव्य के कारक पर्याय और द्रव्य अभेद करके द्रव्य के कारक बताएंगे, और पर्याय को द्रव्य से भिन्न बताने के लिए पर्याय के षटकारक पर्याय में बताएंगे। इस तरह से ये कारकों की जो अलग अलग अपेक्षाओं से चर्चा करते हैं, तो उससे यही बात सिद्ध होता है होती है कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र होती है, प्रत्येक द्रव्य अपने प्रत्येक पर्याय का स्वतंत्र रूप से करता है, अन्य परद्रव्य अन्य किसी द्रव्य का करता है ही नहीं। तो ये जब वस्तु की स्वतंत्रता ख्याल में आती है, तो हमें निश्चित ही कारण और कार्य संबंधी जो कोई भ्रमणा चलती थी वो भ्रमणा नहीं रहती, सही ज्ञान होना ही भ्रम दूर करने का उपाय है। अब इसके आगे पांच समवायों की चर्चा चलेगी। अब तक जो हमने सिद्धांत सीखे हैं उसके बारे में कोई प्रश्न है तो पूछना, तो हम नया विषय शुरू करेंगे कल से। हाँ, कौन सा सुबह का क्वेश्चन था? हाँ, अपादान के फिर पूछो, अलग होने को। हाँ, देखो अपादान कारक की परिभाषा आप निकालने हैं 96, जिसमें से कार्य करने में आता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। हमने इसमें भी देखा था ना, प्रवचन सार के आधार से भी देखा था, ध्रुव वस्तु को अपादान कारक कहा था। ये 16वीं गाथा में ये बात आती है कि जो ध्रुव वस्तु, यहां ध्रुव कौन है, उत्पाद व्यय और द्रव्य जो कहते हैं वो ध्रुव वस्तु, जो द्रव्य ध्रुव वस्तु है, और उसके आधार से यहाँ देखो ये स्वयंभू जो कहा था द्रव्य को ही अपने षटकारक रूप से परिणमित होता हुआ, उसको हमने स्वयंभू कहा था, और उसी में अपादान कारक की बात आती है। ये 16वीं गाथा की टीका में बात है। देखो इसमें लिखा है, जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है, जिसमें से कर्म यानी पर्याय की जाती है उस ध्रुव वस्तु को यहाँ अपादान कहा है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ टीका के मूल शब्द है, शुद्ध अनंत शक्ति में ज्ञान रूप से परिणमित होने के समय पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी, यानी पूर्व की जो छद्मस्थ अवस्था थी, मतिशुद्ध ज्ञान था, उसका नाश होकर केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई कार्य हुआ, सहज ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का अवलंबन करने से, यानी अपना ज्ञान स्वभाव तो कायम रहा, वो तो ध्रुव वस्तु कायम रही, करने से अपादानता को धारण करता हुआ, यानी जो द्रव्य है स्वयं, उसको स्वयं भू क्यों कहा, तो ये षट कारक उसी में हमने देखे हैं, द्रव्य में ही। तो यहाँ जो अपादान कहा वो ध्रुव जो उसका स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव जो ध्रुव है कायम रहने वाला, उसमें मतिश्रुत ज्ञान का अभाव होकर व्यय होकर केवल ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति हुई तो ध्रुव वस्तु क्या है वहां पर, ज्ञान स्वभाव, उसको अवातन कहा है। हमने तो प्रवचन सार के आधार से इसके डेफिनेशंस लिए थे ना। और कोई कारक के बारे में प्रश्न है आपके? क्योंकि एक प्रश्न वो कारण शुद्ध पर्याय के बारे में था, वो तो हम बाद में देखने वाले हैं क्योंकि विषय उसका आगे आने वाला है, कारण शुद्ध पर्याय कार्य शुद्ध पर्याय। तभी इतने ही में बस है ना आपको, ठीक है यहीं रुकते हैं, क्योंकि अभी हम पांच समवाय का जो नया विषय है वो कल सुबह से प्रारंभ करेंगे, तो पर्याय उसमें सब बातें आएगी फिर विस्तार से, यहीं रुकते हैं। लो 2400 भगवान की जय।